आज के मुख्य समाचार जय भारद्वाज के साथ। न्यू साउथ वेल्स की प्रीमियर ग्लैडिस बेरेजेकलिन का कहना है कि राज्य में 5 नए कोरोना वायरस मामलों के कारण हाई अलर्ट लागू। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दी आपात स्थिति में कोरोना वायरस थेरापियोटिक ट्रीटमेंट की इजाजत। और भारत में प्रधानमंत्री मोदी शुरू करेंगे कोरोना वायरस के खिलाफ जन आंदोलन। प्रस्तुत है समाचार विस्तार से। गुरुवार तक न्यू साउथ वेल्स में कोरोना वायरस के 8 नए मामले सामने आए, हालांकि इनमें से 5 के स्रोत की जानकारी है। एनएसडब्ल्यू का स्वास्थ्य विभाग सिडनी हार्बर के वाटरफ्रंट रेस्टोरेंट में वीकेंड पर भोजन करने वाले सभी लोगों से कोविड-19 टेस्ट करवाने और 14 दिन आइसोलेट करने की गुजारिश कर रहा है। प्रीमियर ग्लैडिस बेरेजेकलिन कहती हैं व्यापारियों को कोविड-19 की ज्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता है।
It makes the job of our contact tracers that much more difficult if businesses aren't doing the right thing. And I have no patience anymore for people who aren't doing the, for businesses in particular who aren't doing the right thing. We can't have a few people let down the whole community.
दूसरी तरफ विक्टोरिया में कोविड-19 के 11 नए मामले सामने आए। इन 11 में से 6 मामलों के स्रोत ज्ञात हैं। प्रीमियर डेनियल एंड्रयूज कहते हैं कि पिछले 24 घंटों में 15,000 से ज्यादा लोगों के टेस्ट किए गए।
It's not the detection of a positive case that's the problem. That's exactly what we need. It's about the spread of this virus without us knowing. That's what can set us back. So those numbers are very strong and we are truly grateful to each and every one of those more than 15,000 Victorians who came forward just a little bit more than 24 hours ago.
वहीं प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने रिटायर हो रहे वित्त मंत्री मैथीज कॉर्मन को OECD यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट संस्था के सेक्रेटरी जनरल पद के लिए नामित किया। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से सीनेटर श्री कॉमन इस माह के अंत में रिटायर हो जाएंगे। वे साल 2013 से देश के वित्त मंत्री हैं। प्रधानमंत्री ने सीनेटर साइमन बर्मिंघम को सीनेटर कॉर्मन के स्थान पर वित्त मंत्री और सीनेट का नेता बनाने की घोषणा की। रोजगार मंत्री मिशेलिया कैश सीनेट में सरकार की उपनेता होंगी। श्री मॉरिसन कहते हैं कि OECD के लिए श्री कॉर्मन से बेहतर उम्मीदवार कोई नहीं हो सकता।
The OECD brings together most of the European economies, but it also brings together the economies of North America and the Asia Pacific as a truly global organization and a voice from the Asia Pacific, which will increasingly be the center of the global economy, a voice that understands this region as well. Through our traditional relationships with both Europe and North America, we think is just what the OECD needs.
आज रात संसद में बजट के जवाब में विपक्ष के नेता एंथनी एल्बनीजी महिलाओं के रोजगार पर ध्यान केंद्रित करेंगे। कुछ संगठनों का कहना है कि $240 बिलियन के बजट में महिलाओं की रोजगार में भागीदारी पर जोर नहीं है। पेरेंटहुड जैसे संगठन कहते हैं कि इतने धन से सिर्फ कोरोना वायरस के असर पर ध्यान दिया गया, जबकि बाकी मुद्दे पीछे छूट गए। श्री एल्बनीजी का मानना है कि बजट की कमियों का दूरगामी असर होगा।
If you don't apply a gender lens to policy development, then outcomes without that gender lens in so many areas will favor men. And those outcomes are not just bad for women in terms of the economy, those outcomes without that, every economist will tell you that if you don't apply that lens and don't get a better outcome for women, not just women suffer, we all do.
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस के इलाज के लिए 2 दवाइयों का इस्तेमाल आपात स्थिति में करने की अनुमति दे दी। ट्विटर पर वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि जिन दवाइयों से उनका इलाज किया गया वे लोगों के लिए मुफ्त में उपलब्ध होंगी। व्हाइट हाउस के डॉक्टर कोनली बताते हैं कि इन दवाइयों के कारण श्री ट्रंप पिछले 24 घंटों से वायरस सिम्टम्स से मुक्त हैं। श्री ट्रंप का कहना है कि इन दवाइयों और वैक्सीन के बनने के प्रति वे आशावान हैं।
I walked in, I didn't feel good. A short 24 hours later, I was feeling great. I wanted to get out of the hospital. And that's what I want for everybody. I want everybody to be given the same treatment as your president, because I feel great. I feel like perfect. So I think this was a blessing from God that I caught it. This was a blessing in disguise.
प्रस्तुत है खबर भारत की। भारत के स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने बुधवार को कहा कि भारत में कोरोना वायरस के संक्रमित लोगों के ठीक होने की बढ़ती दर और इलाजरत मरीजों की संख्या में लगातार आ रही कमी साबित करती है कि भारत सरकार के नेतृत्व में कोविड-19 पर रोक लगाने की रणनीति सफल रही। मध्य प्रदेश के रीवा में एक सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के डिजिटल उद्घाटन में श्री हर्षवर्धन ने कहा कि जांच की क्षमता को सफल तरीके से भारत ने आगे बढ़ाया और कुल जांच की संख्या के मामले में देश ने 8 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया। एनडीटीवी की खबर के मुताबिक जनवरी में भारत में एक प्रयोगशाला थी जो कि अब पूरे भारत में 1889 हो गई है। श्री हर्षवर्धन ने कहा कि उपचार और कोविड-19 के टीका के क्षेत्र में वैज्ञानिक प्रगति पर उन्हें पूरा विश्वास है और कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में जल्द ही भारत और अधिक सफलता हासिल करेगा। भारत में कोविड-19 के मरीजों की संख्या बुधवार को 72,049 नए मामलों के साथ 67.57 लाख हो गई, जबकि अभी तक 57,44,000 लोग संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं, जिसके कारण ठीक होने की राष्ट्रीय औसत दर 85.02% हो गई। भारत में नागालैंड के पूर्व राज्यपाल और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई के पूर्व निदेशक अश्वनी कुमार ने शिमला स्थित अपने आवास में आत्महत्या कर ली। उन्होंने फंदा लगाकर खुदकुशी की और इसकी जानकारी स्थानीय पुलिस ने दी। एनडीटीवी की खबर के अनुसार पुलिस को घटनास्थल से सुसाइड नोट भी बरामद हुआ, जिसमें लिखा है कि जिंदगी से तंग आकर अगली यात्रा पर निकल रहा हूँ। इस खुदकुशी की घटना से हालांकि हर कोई स्तब्ध है। श्री कुमार 2008 में सीबीआई के निदेशक बने थे, जब एजेंसी आरुषि तलवार हत्या मामले की जांच कर रही थी। जानकारी के मुताबिक श्री कुमार बाद में नागालैंड के राज्यपाल भी बने थे और अभी श्री अश्वनी कुमार शिमला में एक निजी विश्वविद्यालय के कुलपति थे। प्रस्तुत है करेंसी समाचार। ये समाचार मिलने तक एक ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का मूल्य चल रहा था 71.34 अमेरिकी सेंट्स और 52.35 भारतीय रुपये। खेल की खबरों में चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ मजबूत स्थिति में होने के बावजूद बुधवार रात को इंडियन प्रीमियर लीग 2020 मुकाबले में 10 रन की हार के लिए अपनी टीम के बल्लेबाजों को जिम्मेदार ठहराया। नाइट राइडर्स ने सलामी बल्लेबाज राहुल त्रिपाठी के शानदार अर्धशतक की बदौलत 167 रन बनाए, जिसके जवाब में सुपर किंग्स की टीम ऑस्ट्रेलियाई शेन वॉटसन के अर्धशतक और अंबाती रायडू के साथ दूसरे विकेट की उनकी 69 रन की साझेदारी के बावजूद 5 विकेट पर 157 रन ही बना सकी। सुपर किंग की टीम एक समय में 10 ओवर में 1 विकेट पर 90 रन बनाकर बेहद मजबूत स्थिति में थी, लेकिन सुनील नारायण के 31 रन देकर 1 विकेट और वरुण चक्रवर्ती के 28 रन देकर 1 विकेट और आंद्रे रासेल द्वारा 18 रन देकर 1 विकेट ने आखिरी 10 ओवरों में नाइट राइडर्स को जोरदार वापसी कर जीत दिलाई। महेंद्र सिंह धोनी ने मैच के बाद कहा कि बीच के ओवरों में उन्होंने 2 या 3 ओवर काफ़ी अच्छे फेंके और उनकी टीम विकेट गंवाकर इस मैच को हार गई। प्रस्तुत है मौसम की जानकारी। मौसम विभाग के अनुसार कल यानी शुक्रवार को पर्थ में आंशिक बादल, अधिकतम तापमान रहेगा 22 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 11 डिग्री। एडलेड में ज्यादातर धूप, अधिकतम तापमान 21 डिग्री, न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस। मेलबर्न में बारिश होगी, अधिकतम तापमान 18 डिग्री, न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस। होबर्ट में भी बूंदाबांदी, अधिकतम तापमान 17 डिग्री, न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस। कैनबरा में आंशिक बादल, अधिकतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 7 डिग्री। सिडनी में धूप खिली रहेगी, अधिकतम तापमान रहेगा 25 डिग्री, न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस। ब्रिस्बेन में आंशिक बादल, अधिकतम तापमान 31 डिग्री, न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस। डार्विन में भी आंशिक बादल, अधिकतम तापमान रहेगा 34 डिग्री, न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए।